सुप्रभात सभी को। तो आज हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत से विराट का भ्रम पाठ के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भृन्नला के भेष में अर्जुन और उत्तर ने सारी हस्तिनापुर की कौरव सेना को हरा करके वहाँ से खदेड़ दिया और उत्तर की विजय का उद्घोष विराट में किया गया। और विराट राजा को यही भ्रम था कि मेरे पुत्र उत्तर ने आज हस्तिनापुर की इतनी विशाल कौरव सेना को युद्ध में परास्त कर दिया, लेकिन यह उसका भ्रम था क्योंकि हमने पढ़ा है कि भृन्नला के भेष में अर्जुन ने ही सारी कौरव सेना को और उनके महारथियों को युद्ध में परास्त किया था। लेकिन विराट का भ्रम पाठ में विराट का क्या भ्रम था उसी के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। राजा सुशर्मा पर विराट विजय प्राप्त करके जब राजा विराट नगर में वापस आए तो नगरवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछा कि भाई राजकुमार उत्तर कहाँ है, तो सभी ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि वो कौरव सेना से युद्ध करने गए हैं। राजा ने यह सुनकर एकदम उनको आश्चर्य हुआ। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल भी सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन प्रारंभ में चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोक में देख करके युधिष्ठिर जो कंक के रूप में था, तो कंक ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता ना करें, भृन्नला सारथी बनकर उनके साथ जो गई है। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा कि राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गायें छुड़ा ली गई हैं। यह सुनकर विराट आंखें फाड़ कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही ना होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाया। उन्हें साथ में खुशी तो हुई लेकिन अभिमान भी हो गया। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर कहा, शैलेंद्री चौपड़ की गोटें तो जरा लगा दो, चलो कंक से दो दो हाथ चौपड़ खेल ले, आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूँ। तो विराट तो खुशी के मारे और अभिमान के मारे एकदम फूला नहीं समा रहा था। तो वो युधिष्ठिर के साथ में चौसर खेलने के लिए बैठ जाता है। दोनों खेलने बैठ जाते हैं। खेलते समय भी बातें होने लगती है, देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो भृन्नला उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा, विराट झुंझला कर बोले, आपने भी क्या यह भृन्नला भृन्नला की रट लगा रखी है, मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने लगे हो। युधिष्ठिर ने अब भृन्नला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया और विराट राजा ने अपने हाथ में जो पाशा था वो युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा, क्योंकि वो हमेशा बार बार भृन्नला का नाम सुन करके खींचने लगा। और उसे तो पूर्ण विश्वास था कि मेरे पुत्र उत्तर ने ही विजय प्राप्त की है, लेकिन यह उसका भ्रम था क्योंकि उत्तर तो उनको देख करके धनुष भी उठाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अर्जुन ने उन्हें विश्वास दिलाया और उन्हें अपनी जगह सारथी की जगह बिठाया और बड़ी कौशल से युद्ध किया और पूरे कौरव सेना और उनके महारथियों को युद्ध से भगा दिया और उन्हें परास्त कर दिया। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर भृन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को ही लाओ, भृन्नला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था, डर था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन को क्रोध ना आ जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि भृन्नला को उनके साथ में मत लेके आना, केवल उत्तर को ही, राजकुमार को ही अंदर प्रवेश करने देना। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अर्जुन से पूरी बात मालूम हो चुकी थी कि कंक असल में कौन है, युधिष्ठिर है। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है? विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे हैं। क्यों, तुम उदास क्यों हो गए? पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया, वह डर गया, क्योंकि उत्तर को तो उनकी सारी सच्चाई मालूम चल चुकी थी। विराट कुछ समझ ही ना सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं, बड़ी उत्कंठा के साथ। राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे मेरे सामने। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वे अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा, सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से विवाह कर ले। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान है, इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ विवाह करूं, यानी मैं उससे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरी शिष्य है, मेरी पुत्री के समान है, मैं उससे कैसे विवाह कर सकता हूं? मैंने उसे नाच गाना सिखाया है, मैं उसका शिक्षक हूं, वह मेरी शिष्या के समान है, मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाए। तो अर्जुन ने उन्हें कहा कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तो उत्तरा का विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ हो सकता है। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद ही दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से भी कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है, उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले ही अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो जो दुर्योधन ने दूत भेजा था वह ये ही बात जो दुर्योधन पहले से ही अपनी बात पर अड़ रहा था कि नहीं, उनका अज्ञातवास की अवधि पूरी नहीं हुई है और उन्होंने अभी पांडवों के पास एक दूत भी भेज दिया है और कहा है कि वो पांडवों को फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भेजना चाहता है, क्योंकि शर्त के अनुसार उनकी अवधि पूरी नहीं हुई है। लेकिन और सभी विद्वानगण इस बात को जानते थे कि अर्जुन के प्रकट होने से पहले ही अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी थी। बड़े बड़े विद्वान, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, सभी बुद्धिजीवी यह बात को अच्छे से जानते थे कि अर्जुन प्रतिज्ञा, जो अर्जुन प्रकट हुआ वह अज्ञातवास की अवधि पूर्ण होने के बाद ही प्रकट हुआ है। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण, आप शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से यह पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। यानी आप उनसे पूछिए, सभा में जाकर के इन विद्वान लोगों से पूछिए कि जब अर्जुन प्रकट हुआ था उस समय प्रतिज्ञा की अवधि यानी अज्ञातवास की जो अवधि है वो पूर्ण हुई या नहीं हुई। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी, अर्थात प्रतिज्ञा पूर्ति होने के बाद में ही, अब अज्ञातवास की अवधि पूर्ण होने के बाद में ही अर्जुन उनके समक्ष प्रकट हुआ था और उन्होंने गांडीव धनुष से सभी के समक्ष जो टंकार की थी वो अवधि पूर्ण होने के बाद ही की थी। तो आप इन विद्वान जनों से, भीष्म और जो भी जानकार है उनसे पूछिए तो आप वापस जाइए और उनके समक्ष हमारा यह प्रश्न रखिए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने उस दूत को वापस संदेश देकर भेजा। तो ये प्रतिज्ञा पूर्ति पाठ में बस इतना ही। अगला जो पाठ मंत्रणा है उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।